Hey there, you're listening to The Quint.
और जैसे ही तो मैंने कहा कि क्या कर रहे हैं आप, ये तो पत्रकार हैं। इतना कहते ही दिल्ली पुलिस के अंदर से आवाज आई, कई जो पुलिस वाले थे वो कहने लगे कि ये रहा मंदीप पुनिया, इसको पकड़ो। और उन्होंने एकदम मेरा, जैसे होता है कि एकदम आए और एकदम मुझे खींच के अंदर ले गए और मुझे मारना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र को भी कुछ कुछ मार रहे थे वो, लेकिन उसके बाद जब टेंट में लेके गए तो हम दोनों को अलग बैठा दिया गया और मुझे तो 10 मिनट तक मारते रहे और कहते रहे अच्छा ज्यादा रिपोर्टर बनना है, ये मंदीप पुनिया, वो बिल्कुल टारगेट करके वो पिटाई कर रहे थे।
ये आवाज है मंदीप पुनिया की। 30 जनवरी की शाम स्वतंत्र पत्रकार मंदीप पुनिया को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करती है। करीब 12 घंटे बीत जाने के बाद तक मंदीप के परिवार, दोस्तों, साथियों, पत्रकारों को कोई खबर नहीं दी जाती है कि मंदीप कहाँ है। इस दौरान मंदीप के साथ मारपिटाई की जाती है, उनका कैमरा मोबाइल छीन लिया जाता है, उसे एक थाने से दूसरे थाने में घुमाया जाता है। जब मंदीप को कोर्ट में पेश करने की बारी आती है तो दिल्ली पुलिस बिना कानूनी सहायता के ही मंदीप को कोर्ट में पेश कर देती है और इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बाद में जब मंदीप को जमानत मिलती है तो वो जेल के अंदर से भी अपनी रिपोर्ट अपने शरीर पर लिख कर ले आते हैं और इसी पत्रकार से आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं बिग स्टोरी हिंदी, मैं हूं फबीहा सैयद। आज के पॉडकास्ट में दिल्ली में चल रहे किसान प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए पत्रकार मंदीप पुनिया की बात करेंगे। मंदीप से उनके साथ हुई ज्यादती पर खुलकर बात करेंगे और उनकी पत्नी लीला श्री से भी बात कराएंगे। लेकिन आज पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि आपको मंदीप की ही बात ज्यादा सुनवाएं ताकि आप समझ सकें कि विपरीत परिस्थितियों में अपनी खबर तैयार करना कितना मुश्किल होता है और उसके क्या खतरे हो सकते हैं। 30 जनवरी की शाम को खबर आई कि पत्रकार मंदीप पुनिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई कि उन्होंने मंदीप को हिरासत में लिया है या नहीं, गिरफ्तार किया है या नहीं, केस दर्ज किया है या नहीं, पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया। मंदीप के दोस्त और पत्रकार साथी इस दौरान एक थाने से दूसरे थाने घूमते रहे और एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें पुलिस वालों से आपकी झड़प होती हुई दिख रही है। मंदीप ने हमारी सहयोगी अस्मिता के साथ बात की है, उन्हें सुनिए।
कैसे, मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली उस दिन, उस रात को? एंड हमने एक वीडियो देखा था जहां पे पुलिस वाले आपको ले जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसके पहले क्या हुआ था, आप थोड़ा अगर बता सकते हैं?
वहां पर असल में बैरिकेटिंग लगी हुई थी और उसके उस पार जाने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स खड़े हुए थे। माइग्रेंट जो लेबर होते हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया से छूट के आए थे दिल्ली जाने के लिए, तो उनको दिल्ली पुलिस वाले गालियां दे रहे थे और गालियां देकर कह रहे थे भाग जाओ, यहाँ से नहीं जाना है। तो वो मैं वीडियो शूट कर रहा था और एक साथी धर्मेंद्र पत्रकार थे, वो भी शूट कर रहे थे। तो धर्मेंद्र को पुलिस ने चालाकी से बुला लिया कि एक बार आप आ जाइए। तो उसको जैसे ही बुलाया, उनको धर्मेंद्र को उन्होंने खींच लिया दिल्ली पुलिस ने। और जैसे ही खींचा तो मैंने कहा कि क्या कर रहे हैं आप, ये तो पत्रकार हैं। इतना कहते ही दिल्ली पुलिस के अंदर से आवाज आई, कई जो पुलिस वाले थे वो कहने लगे कि ये रहा मंदीप पुनिया, इसको पकड़ो। और उन्होंने एकदम मेरा, जैसे होता है कि एकदम आए और एकदम मुझे खींच के अंदर ले गए और मुझे मारना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र को भी कुछ कुछ मार रहे थे वो, लेकिन उसके बाद जब टेंट में लेके गए तो हम दोनों को अलग बैठा दिया गया और मुझे तो 10 मिनट तक मारते रहे और कहते रहे अच्छा ज्यादा रिपोर्टर बनना है, ये मंदीप पुनिया, वो बिल्कुल टारगेट करके वो पिटाई कर रहे थे। तो उसमें मेरे पैर के, मेरा नाम लेके, हाँ मेरा नाम लेकर वो मुझे पिटाई कर रहे थे। और मेरे जो पैर था, उस जो लेफ्ट पैर है उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा चोटें हैं, उसके ऊपर उन्होंने ठीक ठाक डंडे मारे हैं। तो और उसके बाद हाँ जी बताइए।
तो आपका नाम उनको कैसे पता चला, मतलब उनको आप उनके नोटिस में कैसे आए बेसिकली? और इसके पहले भी एक फेसबुक लाइव आपने किया था उसके पहले वाले दिन जब सिंघू में क्लैशेस हुए थे, तो उस टाइम पे भी क्या पुलिस वालों ने आपको रोका था या ऐसा कुछ हुआ था? और उसके, आपको लगता है उस वीडियो का कोई संबंध है आपके अरेस्ट या आपके साथ जो हो उसके बारे में?
जी बिल्कुल, उससे पहले दिन से ही बात शुरू हो जाती है। जब मैं वहां पर वीडियोग्राफी कर रहा था और मैं जो पुलिस वाले जो बैकअप कवर दे रहे थे, जो पत्थरबाज थे बीजेपी कार्यकर्ता जिनको बाद में मैंने एक्सपोज किया उनके फेसबुक अकाउंट से और उनके जो मेरे जो लोकल सूत्र थे उनसे मैंने उनको एक्सपोज किया, उनके फोटोज वीडियोज मेरे पास थे। तो उसके बाद से ही मैंने उस नेक्स्ट डे जिस दिन मेरे को गिरफ्तार किया गया था उस दिन मैंने बात की थी डीसीपी मीना साहब से, तो फोन पे उनसे बाइट ली थी, और वहां पर जो दिल्ली पुलिस के जो और लोग थे उनसे भी मैं बात कर रहा था, तो उनको एक हो गया था कि ये एंटी पत्रकार है, ये हमारे खिलाफ कुछ दिखाने जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है, हमारा काम होता ग्राउंड पे फैक्ट फैक्ट दिखाना, हमारा हम कोई पक्षपात थोड़ी ना करेंगे, हमें क्या लेना देना किसी से। तो वो उस वजह से उनको हो गया था कि इसका हमें कैमरा तोड़ना, मेरे पास एक छोटा सा कैमरा था कैनन का मिररलेस, वो उन्होंने तोड़ दिया। एक सैमसंग का फोन था, उसका अभी तक पता नहीं है कि वो कहाँ है, उसकी वीडियोज मेरे सामने, उसको खोल के और वीडियोज डिलीट किए उसमें, और
आपके सामने
मुझे
डिलीट किए
पीट
कि आपसे लिए फोन ले लिया था उन्होंने?
नहीं, उन्होंने मेरे से फोन छीना और उसमें उसको खोला फोन को, और वीडियो डिलीट कर रहे थे, और वीडियो डिलीट करते और मुझे मारते वो, तो उन्होंने वो सारे जो सैमसंग वाले फोन में जितने वीडियोस वगैरह थे वो उन्होंने डिलीट किए।
आपको पुलिस स्टेशन जब लेके गया उसके बाद क्या हुआ? और आप ऐसा भी मालूम होता है कि नेक्स्ट डे जब आप कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले थे, लॉयर के आने से पहले ही उन्होंने आपको कोर्ट ले प्रोड्यूस किया था, राइट?
जी, मेरे को उस टेंट जो जहाँ पर मुझे रखा गया था उस टेंट से मुझे एक व्हाइट स्कॉर्पियो में बैठा के ले जाया गया। तो पहले तो दिल्ली में वो घुमाते रहे, उसके बाद एक पुराना सा कोई पुलिस स्टेशन था वजीराबाद के उस पार, वहाँ मुझे बैठाए रखा 12-1 बजे तक। उन्होंने मेरी जैकेट उतरवा दी और ठंड में पंखा चला दिया, और मुझे उस पंखे के नीचे ठंड में बैठाए रखा, और साथ में वो इस तरीके की बात करते रहे कि इसके ऊपर ये एक्ट लगा देते हैं, इसके ऊपर वो एक्ट लगा देते हैं, इसको रेड लाइट एरिया में छोड़ देते हैं, वहां से इसको अरेस्ट दिखा देते हैं, ऐसे बात कर रहे थे। इतने में एक कॉन्स्टेबल आया, वो वीडियो चला के लेके आया और बोला कि इंटरनेट पे इसकी गिरफ्तारी का वीडियो वायरल हो रहा है। तो इतना सुनते ही वो जितने भी लोग बैठे थे जो मुझे तंग कर रहे थे वो एकदम कमरे से बाहर जाते हैं, और आधे घंटे बाद आते हैं वो, मुझे अकेला छोड़ देते हैं कमरे में, और आधे घंटे बाद आके वो मुझे दोबारा स्कॉर्पियो में बैठाते हैं उसमें, और फिर उस स्कॉर्पियो से मुझे शिफ्ट कर देते हैं प्राइवेट गाड़ियों में, छोटी छोटी प्राइवेट गाड़ियां थी प्राइवेट नंबर्स की, तो उनमें मेरे को बैठा के अम्बेडकर अस्पताल लेके जाते हैं, वहां पर मेरा मेडिकल करवाते हैं वो लोग। तो वहां पर मेडिकल करवा रहे थे 1 बज, तो मैंने टाइम नोट किया था रात का 1:40 हो रहा था तब मैंने देखा, तो वो वहां पर डॉक्टर मेडिकल कर रहे थे, तो डॉक्टर के पास बार बार जाके वो ऐसी बात कर रहे थे, स्टाफ का ही मामला है, इसको ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा चोटे मत लिखो। तो डॉक्टर साहब ने कहा देखिए मुझे अपना काम करने दीजिए, और मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब का, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से मेडिकल किया, उन्होंने सारा मेडिकल किया, और उन्होंने पुलिस वालों को भी कहा कि आप हमारे काम में खलल मत डालिए। उन्होंने एक्सरे किए और मेरी जितनी भी चोटें थी उनके बारे में मेंशन किया, और उसके बाद मुझे 3:30 के आसपास समय पर बादली पुलिस स्टेशन है उसके लॉकअप में मुझे उन्होंने बंद कर दिया। इस बीच में उनसे लगातार कह रहा था कि मुझे मेरे घर वालों से बात करवा दीजिए, मुझे लीगल एड की जरूरत है, आप अगर मेरे ऊपर उम्र को गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो उन्होंने ना तो मेरे किसी से बात करवाई घर वालों से, ना उन्होंने मेरे को लीगल एड मेरे एडिटर से बात करने दी। मैं आरतोष बल से बात करना चाह रहा था, उन्होंने उससे बात नहीं, विनोद जोश से बात करना चाह रहा था, अभिषेक श्रीवास्तव से बात करना चाह रहा था, ये मेरे एडिटर्स हैं, उन्होंने इनसे बात नहीं करने दी मुझे। और उसके बाद और मेरे जितने भी पत्रकार दोस्त थे वो अलीपुर थाने में घूम रहे थे, जबकि मुझे समयपुर बादली में उनको बिना बताए वहां पर लॉकअप में बंद कर दिया था। 9 बजे सुबह मेरे घर वालों को पता चला, और वो आते हैं थाने में समयपुर बादली में, उनसे मिलके जाते हैं, लॉयर्स भी होते हैं उसमें कई, तो जो लॉयर्स आए थे उनको वो बोलते हैं कि 2 बजे हम कोर्ट में इसको प्रोड्यूस करेंगे तिहाड़ वाले कोर्ट में, लेकिन वो मुझे 1 बजे ही चालाकी से वहां ले जाते हैं और पहले प्रोड्यूस कर देते हैं, मेरा वकील भी वहां नहीं पहुंच पाता है, और मेरे वकीलों को तिहाड़ जेल के बाहर रोक कर रखा जाता है, वो कोशिश कर रहे होते हैं अंदर जाने की लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है, और मुझे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है।
ये तो पूरा वायलेशन ऑफ मतलब लॉ का वायलेशन है. आप कोर्ट लॉयर के बिना आपको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, फिर वहां से आपको तिहाड़ में भेज देते हैं. आपका वीडियो कल एक वायरल हो गया था फिर से, जहां पे आप कह रहे कि आपने कुछ नोट्स लिखे हैं तिहाड़ से. शायद आर्टिकल आने वाला है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हमें बता सके कि एग्जैक्टली तिहाड़ में जब जितने घंटे भी यहाँ पे आपने स्पेंड किया, उसमें एग्जैक्टली क्या फील हो रहा था आपको, और अगर वो घंटों का अगर डिस्क्राइब करना होगा तो आप कैसे करेंगे?
देखिए, जब मैं तिहाड़ जेल में जब एंटर करता हूँ तो वहां पर जितने भी कैदी थे वो मुझे जान रहे थे, और वो लगातार ये बात कर रहे थे, ये मनदीप पुनिया है, पत्रकार है, इसको गलत गिरफ्तार किया गया है, इस तरीके से बातें हो रही थी। उसके बाद मुझे उसी वार्ड में बंद किया गया जिस वार्ड में किसान बंद थे, तो उनकी चक्की में मुझे बंद किया गया। तो मेरे उस चक्की में 3 लोग थे, 2 किसान थे, जिसमें जसमिंदर सिंह एक किसान साथी थे मानसा के, पंजाब के, उनसे बात करना शुरू किया। उनसे बात करना शुरू किया तो उन्होंने भी अपनी चोटों के निशान दिखाए। फिर मुझे समझ में आया कि मेरे को लगा कि मैं सत्ता का इतना बड़ा विक्टिम नहीं हूँ जितना बड़े ये विक्टिम है। ये तो बिल्कुल गांव देहात से आए हैं, और इनको अभी तक तो ये तक भी नहीं बताया कि इनके ऊपर क्या धाराएं लगाई गई हैं, और इनको मुझसे पहले गिरफ्तार किया गया, मुझसे ज्यादा चोटें उनके शरीरों पर थी। तो एक पत्रकार का तो यही काम होता है कि जो सत्ता द्वारा सताए हुए लोग होते हैं उनकी रिपोर्ट करना। तो मुझे लगा कि अब ठीक है कि जेल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेल में भी तो जो जो किसानों को बंद कर रखा, उनको सताया गया है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनकी रिपोर्ट की जाए। तो फिर मैंने कहीं से जो सेवादार वगैरह होते हैं उनसे पेन का जुगाड़ किया, और उस पेन से फिर मैंने अपनी जो पैर थे उनके ऊपर नोट्स लेने शुरू कर दिए, और उनके नाम लिखे किसानों के, उनकी उम्र, उनके उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए वो लिखे, उनके फोन, उनके घर वालों के फोन नंबर भी लिखे। तो वो बेसिकली यही कारण था कि मैं समझ पाऊं कि जो किसान गिरफ्तार कर रखे हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं और कैसे उनको गिरफ्तार किया गया। सारे जो किसान थे वो बहुत छोटे किसान थे, आम घरों से किसान थे। किसी के 5 एकड़ का किसान है, कोई 4 एकड़ का किसान है, और उनको एग्जैक्टली बेचारे वो चिंतित थे, डरे हुए नहीं थे, चिंतित थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनके ऊपर क्या धाराएं लगाई गई हैं, क्या क्यों उठाया गया। जो जसमिंदर सिंह थे उनको तो नरेला से उठाया गया था, जब वो सामान अपना मार्केट से लेने गए थे नरेला से, उनकी पूरी जो लात थी, जो लेफ्ट लेग थी और राइट लेग थी, दोनों लातें थी, उनके ऊपर निशान निशान थे, उनकी कमर पे भी नीले रंग के निशान थे बड़े बड़े। तो वो उनसे मेरी बातचीत हुई किसानों से, तो तब मुझे लगा कि रिपोर्ट की जानी चाहिए। और साथ में एक ख्याल ये चल रहा था कि मेरे जैसे जो अपने ड्यूटी कर रहे होते जर्नलिस्ट, उनको औरों को भी गिरफ्तार किया गया, अगर मैं उनसे पहले बाहर जाऊंगा तो मैं जरूर ये कहूंगा कि जो और साथी जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे रिपोर्टर, उनको भी फ्री किया जाए। कप्पन सिद्दीकी साहब का मेरे बार बार में दिमाग में नाम आ रहा था, तो इसलिए जब मैं बाहर निकला तिहाड़ से तो मैंने उनका नाम लिया कि उनको फ्री किया जाए। और उनके जैसे जितने भी गांव जवार से जो रिपोर्टर, जो गांव देहात से जिनको अलग अलग परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, और उनको उनके ऊपर जो राजकीय दमन हुआ है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा, उनको छोड़ा जाए, उनको इमिडिएटली रिलीज किया जाए, क्योंकि हमारा काम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना होता है, हमें वो करने दिया जाए, हमारे काम में खलल ना डाला जाए। तो और ऐसे टाइम जिस समय सत्ता बहुत कुछ छुपाना चाह रही है, उस समय तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है कि जो वो छुपाना चाह रही है वो हम लोगों को दिखाएं।
तो जैसा आपने मनदीप को सुना कि किस तरह से उनके साथ पुलिस ने बदसलूकी की, मार पिटाई की, जब एक पत्रकार के साथ पुलिस ये कर सकती है, तो सोचिए आम नागरिक और प्रदर्शनकारी किसानों के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती होगी। मनदीप को जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस ने उसकी जमानत में भी खलल डालने की कोशिश की। मनदीप की जब पहली बार कोर्ट में पेशी हुई तो उसके बाद हमारे सहयोगी शादाब ने मनदीप की पत्नी लीला श्री से बात की थी। उनको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मनदीप की गिरफ्तारी के बाद उन पर क्या बीती।
अभी मनदीप की पेशी हुई है जुडिशियल, आई थिंक तिहाड़ कोर्ट 2 कॉम्प्लेक्स था वो। पेशी के बाद उसको करीब 2 बजे का टाइम दिया गया था, 1:30 पे उसकी पुलिस ने एंट्री करवाई थी, 1:55 पे उसको एंट्री एग्जिट करवा दिया गया था, 1:50 पे हमारा वकील अंदर गया था, और हमारे वकील के जाने के सिर्फ 2 या 3 मिनट बाद मनदीप बाहर निकल गया था। तो ये मुझे देख के थोड़ा सा अजीब लगा कि हमको एटलीस्ट 2 बजे तक का वेट कर लिया होता, कि 2 बजे का टाइम दिया था तो 2 बजे का वेट कर लिया होता, मतलब कौन से ऐसे जज थे। और उसके बाद मनदीप जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो ठीक हैं काफ़ी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि वो तिहाड़ जेल में अभी जुडिशियल कस्टडी में है।
कितने दिन की जुडिशियल कस्टडी है
उनके ऑर्डर में? 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी लिखी है। हाँ
तो लीला एक बात बताइए, आपको कब पता चला कि मनदीप को कैसे इन्होंने मतलब गिरफ्तार किया है?
मनदीप
खबर थी
पिछले
आपको?
2 महीने से सिंगू पे काम कर रहे थे और
किसानों के
उसके
प्रदर्शन
साथ,
में
जी किसानों के साथ में ही थे, और उसके साथ कुछ और दोस्तों से मेरा कॉन्टेक्ट था, और उन्हीं में से किसी ने मुझे फोन करके बताया 6:30 के आसपास कल शाम में, हाँ कल शाम में, और कि नहीं मनदीप दिखाई नहीं दे रहे हैं, और कुछ खबर ऐसी है कि उसको उठा लिया गया है वैन में। उसके बाद मैंने उसके कुछ और पत्रकार दोस्तों से बात करने की कोशिश करी और यही समझ में आया कि मतलब उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। चार सुबह के चार लगभग बज गए थे, कोई कन्फर्मेशन नहीं थी कि वो किस जगह पे, मतलब कहाँ पे उसको बिठा के या छुपा के या फिर मतलब कैसे भी रखा है।
तो आपने सुना कि मनदीप के साथ क्या हुआ और हमारे देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस का काम करने का तरीका क्या है। मनदीप ने बताया कि पुलिस वाले उसे पहले ही से पहचानते थे और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी ये जानते हुए की है कि वो पत्रकार हैं और किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं, लेकिन मनदीप की गिरफ्तारी के बाद से ही ट्विटर पर वो ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया में उनको रिहा कराए जाने की मांग तेज होने लगी और दिल्ली पुलिस भी दबाव में आ गई। मनदीप का पूरा इंटरव्यू आप क्विंट पर सुन सकते हैं और इसी के साथ ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं, लेकिन एक अहम जानकारी के साथ। हमारा डेली न्यूज पॉडकास्ट शो बिग स्टोरी हिंदी हम फिलहाल बंद कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में ये पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो द क्विंट की वेबसाइट पर जाकर सुन सकते हैं, वहां पर ये डेली न्यूज पॉडकास्ट जारी रहेगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को पढ़ने, देखने, सुनने के लिए बने रहिए क्विंट हिंदी के साथ, और बिग स्टोरी हिंदी को फॉलो करने के लिए, सुनने के लिए, पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट के एडिटर हैं संतोष कुमार, इसके प्रोड्यूसर हैं वैभव पलिनीटकर, इसकी होस्ट और साउंड एडिटर हैं फबीहा सैयद। अगर आपको बिग स्टोरी हिंदी सुनना पसंद है तो क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर लॉग ऑन कीजिए और हमारे पॉडकास्ट सेक्शन का मजा लीजिए।